खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी खिदमत में आज शाम फिर खुदा का कलाम लेकर आ सका। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो एल्डर रज़ाक पीटर साहब ने स्पॉन्सर किया है, जिनका ताल्लुक प्रातो इटली से है। तो हम खुदा का बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी इस खिदमत के लिए, और बाकी जो बहन भाई पोशीदगी में इस खिदमत को सर अंजाम देते हैं उनके लिए भी हमारे दिलों में बहुत शुक्रगुजारी है। और मेरे दिल से दुआ है कि खुदा उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दे और उन्हें बुलंदी पर लेकर जाए, और खुदा ऐसा करेगा क्योंकि वो कादर मुतलिक है। आए एक लम्हे के लिए, मैं पहले तो एक लम्हे के लिए माफ़ी मांगूंगा क्योंकि प्रोग्राम लेट हो गया आज 10 मिनट। तो आप लोग जो खुदा के कलाम के मुंतजर हैं, मैं ईमान रखता हूं कि खुदा अपने कलाम के वसीले से आज शाम आपको मुस्तफीद करेगा और आप आज के कलाम के वसीले से बरकत हासिल करेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह के कलाम के वसीले से, उसकी इंजील की कुदरत के वसीले से बड़े बड़े काम जहूर में आएंगे। आए एक लम्हे के लिए सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ, तेरी हमद और शुक्रगुजारी करते हैं, और प्यारे खुदा यीशु मसीह, तू जो हमारे लिए कलवरी की सलीब पर मर गया था और तीसरे दिन मरकर मुर्दों में से जी उठा, और तू आज भी जिंदा है, तेरी कब्र आज भी यरूशलेम में खाली है, तेरा शुक्र करते हैं। और प्यारे खुदा यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्र करता हूँ जितने लोग तेरे कलाम को इस प्रोग्राम के वसीले से सुनते हैं, और ख़ास तौर पर आज शाम जितने तेरा कलाम सुनेंगे और इसके बाद मुख्तलिफ मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए जितने लोग इस प्रोग्राम के वसीले तेरा कलाम, तेरी पाक इंजील सुनेंगे, तो अपना जलाली हाथ बढ़ाकर उनके दिल की मुरादों को पूरा करना, क्योंकि तू हर बशर का खुदा है। तेरे कलाम में लिखा है अब्राहम, इजहाक और याकूब इसराइल के खुदा, कि तू सब कौमों का खुदा है, तू सब पर रहम करता है, और ख़ास तौर पर जो बर्रे के लहू खुदा यीशु मसीह के खून के वसीले तेरे पास आते हैं, तू उन्हें पूरी पूरी निजात देता, हम तेरा शुक्र करते हैं। और मैं दुआ करता हूँ तू अपने कमज़ोर बंदे को छू और अपने कलाम को नाजिल फरमा, ताकि जिस जिस घर में तेरा कलाम सुना जाए वहाँ से सारी तारीकी की कुवतें चली जाएं, और मैं तेरा खादिम होता हर तरह की तारीकी की कुवतों को खुदा यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ, और उन्हें खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, इसी लम्हे खारिज हो जाए। और प्यारे खुदा, तेरे पाखरू की हजूरी, तेरे पाखरू का मसा, तेरा जलाल, तेरी कुदरत अब इस वक्त यहाँ पर स्टूडियोज में और तेरे खादिम पर भी ठहर जाए, और उन तमाम घरों घरानों पर भी ठहरी रहे जहाँ जहाँ लोग तेरा कलाम सुनेंगे, खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے آپ دیکھیں لوکا کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 17 باب یعنی پنجابی 17 باب لوکا دی انجیل وہ 17 باب وہ 11 آیت تو میں پڑھوں گا تو 11 آیت سے لے کر کے 19 آیت تک میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا تو گوسپل آف لوک چیپٹر 17 verses 11 to 19 اور لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہے تھے اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے 10 کوڑی اس کو ملے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے یسوع اے صاحب ہم پر رحم کر اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے آپ کو کہنوں کو دکھاؤ یعنی جو پریسٹ تھے جو یاجک یا جاجک تھے جو خدا کی ہیکل میں خدمت کرتے تھے فرما دیا کہ ان کو جا کر اپنے آپ کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید یعنی خدا کی تعریف کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل خدا یسوع مسیح کے پاؤں پر گر کر ان کا شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا یسوع نے جواب میں کہا کیا 10 لوگ تھے آپ جو کوڑی تھے کیا 10 کے 10 پاک صاف نہ ہوئے پھر وہ 9 کہاں ہیں کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر یعنی واپس آ کر خدا کی تمجید یعنی خدا کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہیں پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا آمین پریز گاڈ کلام کا یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں ہم خدا کے رحم کو دیکھتے ہیں اور خدا کے کلام کی قدرت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں میں نے پچھلے ٹیوزڈے کو جو پیغام سنایا تھا آپ کو جو کلام سنایا تھا کہ خدا یسوع مسیح کے کلام میں کیسا اختیار اور کیسی قدرت تھی اور لوگ جو تھے وہ حیران ہوتے تھے اس کے بڑے اور عجیب کاموں کو دیکھ کر خدا کی تعریف کرتے تھے اور یہ خدا یسوع مسیح جب سامریا اور گلیل کے بیچ میں سے اور اس بات سے میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح جو کہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند پربھوؤں کے پربھو مالکوں کے مالک راجاؤں کے راجا اور خالق کائنات ہیں اب کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا یعنی کلام کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا یعنی خدا اور لکھا جو کچھ بھی پیدا ہوا یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 1, 2, 3, 4 آئے دا گوسپل آف جان چیپٹر 1 verses 1, 2, 3, 4 لکھا جو کچھ بھی پیدا ہوا ان میں سے کچھ بھی کلام کے بغیر پیدا نہیں ہوا سب کچھ کلام نے پیدا کیا ہے اور کلام نے جسم لیا ہے اور جسم لے کر انسان کا روپ لے کر سامریا کے بیچ سے گلیل کی گلیوں میں اپنے مبارک قدم رکھ رہے ہیں وہاں پر چل رہے ہیں یہ کیسی عظیم ترین بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آسمان پر اس سے بڑی برکت انسان کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتی انسان کو سب سے بڑی برکت मैं समझता हूं जो मिली है वो खुदम यीशु मसीह है, और ये बरकत आसमान से उतरी है, और खुदम यीशु मसीह इंसानों की तरह ही गलील की गलियों में चलते हुए जा रहे थे, तो लिखा है कि 10 कोड़ी वहां से निकले और दूर खड़े होकर, क्योंकि मूसा की शरीयत में फरमाया गया था कि अगर किसी को कोढ़ हो जाए, लेप्रेसी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अगर किसी को कोढ़ हो जाए, और कोढ़ जो है ये नाकाबले इलाज मर्ज था उस जमाने में भी और आज भी, कोई किसी तरह से अगर ठीक हो जाए तो वो एक अलग चीज है, खास तौर पर जिस पर खुदा रहम कर दे, अदरवाइज कोढ़ी बेचारा जिसको एक दफा कोढ़ हो जाता है वो उम्र भर ठीक नहीं हो सकता। ये 10 कोढ़ी जो थे, ये 10 इसलिए भी इकट्ठे रहते थे क्योंकि जितने कोढ़ी लोग थे बेचारे, उनको क्योंकि गांव से शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, और वो बेचारे एक दूसरे के साथ ही सिर्फ मिल सकते थे, मेल मिलाप रख सकते थे, एक दूसरे के साथ रह सकते थे, वो आम सेहतमंद इंसानों के दरमियान नहीं रह सकते थे, वहां पर दाखिल नहीं हो सकते थे, बल्कि कलाम में लिखा है कि जब किसी को कोढ़ की बीमारी लग जाए तो अगर वो कहीं से किसी गली में से या किसी मोहल्ले से या किसी शहर के पास से, गांव के पास से अगर वो गुजरे, तो अपने हाथ में घंटी रखे और घंटी बजाता जाए और अपने मुंह से कहता जाए, नापाक नापाक नापाक, नापाक का मतलब अनक्लीन इन इंग्लिश, अशुद्ध पंजाबी और हिंदी में, यानी वो दूर से खुद ही इकरार करता जाएगा, मैं नापाक हूं, नापाक आ रहा है, नापाक अनक्लीन पर्सन आ रहा है, आगे आगे से हट जाए, और लोग उनको देखकर दरवाजे बंद कर देते थे, छुप जाते थे, इसलिए क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज थी, ये ऐसी बीमारी थी, अछूती बीमारी जिसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं या हिंदी भाषा में हम कहते हैं, ये ऐसी बीमारी थी कि जो एक से दूसरे को लगती थी, शायद हवा के जरिए ही लग जाती थी, कोड़ी का साया शायद ऐसा भी समझा जाता था, कोड़ी का साया अगर दूसरे सेहतमंद आदमी पर पड़ता था तो उसको भी कोढ़ हो जाता था, इसलिए ये बेचारे दूर से खड़े होकर जब खुदावंद यीशु मसीह को इन्होंने दूर से देखा तो इनकी ना उम्मीदी उम्मीद में बदल गई, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कोई सुनता है तो उसकी जिंदगी में उम्मीद आ जाती है, ना उम्मीदी चली जाती है। यह एक अलग बात है अगर कोई शख्स अपने दिल को सख्त कर ले, अगर कुछ अपने दिल को सख्त करता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप खुले दिल से खुले जहन के साथ खुदावंद यीशु मसीह को अगर आप कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को, उसकी इंजील को सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते या पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सारी नाउम्मीदी खत्म हो जाती है, उम्मीद की किरण आपकी जिंदगी में उसी वक्त निकल आती है। ये जो कोड़ी थे इनके लिए ये उम्मीद आ गई थी कि अब हम शिफा पा जाएंगे, शायद ये काफी अरसे से इकट्ठे होकर यही प्लानिंग कर रहे थे, यही प्रोग्राम था उनका कि कभी ना कभी, हमने सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह कोड़ियों को पाक साफ कर देते हैं, हम कभी ना कभी तो हमारा सामना हो जाएगा, कभी ना कभी तो हमें शिफा मिल जाएगी, कभी ना कभी तो मौजजा चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर उतरे हुए हैं, वो इंसान का रूप लेकर इंसानों की बीमारियों से और शैतान के हाथ से जुल्म उठाने वाले लोगों को रिहाई बख्शते हैं। ये इसी बात के इंतजार में थे, हो सकता है उनमें 10 में कोई एक नया कोड़ी हो जिस किसी ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुन रखा हो जब वो सेहतमंद था, कि कैसे बड़े और अजीब काम, क्योंकि कलाम में लिखा है जब हम मत्ती की इंजील और उसका चौथा बाब पढ़ते हैं उसके 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आयत, तो लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने जब मुनादी या प्रचार करना शुरू किया, प्रीचिंग करनी शुरू की, तो लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह ने बदरुहों को निकाल दिया, हुक्म दे दिया, शैतानी कुवतों को भगा दिया, बीमारों को शिफा दे दी, तो लिखा है कि यहूदिया में और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में, तमाम शहरों में खुदावंद यीशु मसीह की धूम मच गई, हर तरफ मशहूरी हो गई कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह शिफा देता है और कैसे बड़े मौजज़े और काम करता है और मुख्तलिफ तरीकों से करता है, वो कह देता है और शिफा हो जाती है, वो फरमा देता है और मौजज़ा बड़े से बड़ा मौजज़ा हो जाता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, अंधों की आंखें खुल जाती हैं, लंगड़े चल पड़ते हैं और कोढ़ी पाक साफ हो जाते हैं। हो सकते हैं 10 में से एक ने सुना हो डायरेक्ट ही, लेकिन जब वो कोढ़ियों में शामिल हुआ हो तो उसने कहा हो शायद हम यहीं पर मर जाएंगे, लेकिन एक उम्मीद है, आए इकट्ठे होकर कहीं इधर उधर फिरते हैं, हो सकता है सेवियर के साथ, नजात दहिंदा के साथ, मुक्ति दाता के साथ, प्रभुओं के प्रभु के साथ, बादशाहों के बादशाह के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ, खुदा के बेटे के साथ हमारा आमना सामना हो जाए। और जब आमना सामना हो जाएगा तो हम कदमों में गिर जाएंगे, करीब तो हम जा नहीं सकेंगे, दूर ही से हम मिन्नत करेंगे, दूर ही से अपनी दरखास्त पेश कर देंगे। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। और दरखास्तों को सुनने वाला जरूर हम पर कृपा और दया करेगा, जरूर हम पर रहम करेगा, जरूर हम पर दया हो जाएगी, हमारी स्किन, हमारी जो मुर्दा हो चुकी है, हमारा जो सारा बॉडी का सिस्टम जो है स्किन का, हमारी खाल जो मुर्दा की तरह हो चुकी है, हमारी खाल में फिर से, हमारी स्किन में फिर से जिंदगी आ जाएगी, हम दूर खड़े होकर मिन्नत कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कैसे बड़े काम ये रबी, रबई, ये उस्ताद, मुजस्सम कलाम यीशु जो के मसीह है कैसे बड़े काम करता है। उन्होंने कहा हम दूर ही से खड़े होकर जनाब की मिन्नत कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं, मेरी बात गौर से सुने, हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि मैं खुदा से बहुत दूर हूं। मेरे भाई सुने, मेरी बात गौर से सुने, चाहे आप बड़े से बड़े गुनहगार हैं, आपने चाहे लाखों करोड़ों अरबों गुनाह किए हों, क्योंकि कलाम में लिखा है कोई भी इंसान नहीं जो सिर्फ रास्तबाजी करता हो और गुनाह ना करता हो। और कलाम में यह भी लिखा है रोमन्स चैप्टर 3:23, सब ने गुनाह किया, सभी खुदा के जलाल से महरूम है। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि मैंने तौबा की थी लेकिन मैं फिर गुनाह में गिर गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कलाम में लिखा है कि सादक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। माफ कीजिए, जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं खुदा से दूर हूं, तो अगर आज शाम आप उन कोड़ियों की तरह दूर ही से अगर खुदा यीशु मसीह को पुकारेंगे, बादशाह के कलाम को सुनकर जैसे ही आप उसको पुकारेंगे और इन कोड़ियों की मानंद कहेंगे, क्या खुदा मुझ पर रहम कर, मैं नापाक हूं। कोड़ी होने का एक मतलब यह था कि जिस्म, जैसा मैंने बयान किया कि जो स्किन है, जो खाल है इंसान की, मुर्दा हो जाती है, इसमें जिंदगी नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है जिस्म जो है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अंदर से नापाक हैं या अंदर से मुर्दा हैं, तो जिंदगी देने वाला आपका मुंतजर है। जिंदगी देने वाला, आप कहेंगे मैं तो खुदा से दूर हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम में लिखा है फिलिपियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 4, 5, 6, 7 आयत, द लेटर टू फिलिपियंस चैप्टर 4 verses 4, 5, 6, 7, 8, खासतौर पर 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद करीब है, यानी प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो आपके पास हैं। हम जरूर दूर हो जाते हैं खुदा से, पर वो हमसे दूर नहीं जाता, वो हमारे पास ही रहता है। और इसलिए अगर आज शाम आप ऐसा सोचते हैं कि मैं दूर हूं, लेकिन दूर ही से अगर अपनी आवाज को बुलंद करें उसके सामने घुटने टेक दें, उसके सामने अपना अपनी तकलीफ को, या पंजाबी अपना हाड़ा जब उसके सामने रखोगे, तो प्रभु यीशु मसीह ताड़े दे दया करी देंगे। अपनी आवाज जदों तुसी बुलंद करोगे, उन्हां दे चरणां च जदों तुसी डिग पवोगे, मत्था टेक दवोगे, ते अपना जीवन जदों प्रभु यीशु मसीह नूं दे दोगे अज शामी, ते तुसी अजीब कम प्रभु यीशु मसीह दे अपने जीवन च अपनी जिंदगी च देखोगे। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। लिखा उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा और कहा कि ऐ साहेब, ऐ उस्ताद, ऐ रबी, ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर। अब ना तो उनको बताने की जरूरत थी कि हम कोड़ी हैं, और ना खुदावंद यीशु मसीह को किसी को पूछने की जरूरत थी इनको प्रॉब्लम क्या है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये कोड़ी हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कुछ मशवरा और नहीं दिया कि शायद कोई हकीम या कोई डॉक्टर हो, या किस तरह से ये कर लो, वो कर लो, उधर चले जाओ, ऐसा कर लो, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ एक लफ्ज कहा। अब यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। खुदावंद यीशु मसीह अगर किसी को कहते हैं कि आ, और एक ऐसा काम इंसान की जिंदगी में हो जाता है जो इंसानों की हिस्ट्री में, बनी नौ इंसान की तारीख में, जो कि सबसे अनोखा और वखरा काम, के मुकद्दस पतरस रसूल जो थे वो पानी पर चलना शुरू कर देते हैं, सिर्फ एक शब्द कहने से, सिर्फ एक लफ्ज कहने से। जैसा कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील और उसका 12 बाब और उसकी 22 से 30 आयत तक लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेज दिया झील में, और खुद पहाड़ पर चले गए, और अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के पास आना चाहते थे, और अभी पौ फट रही थी, अभी सूरज निकला नहीं था, और खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के पास पानी के ऊपर चल कर आ गए। तो जब शागिर्दों ने कश्ती में बैठे हुए देखा कि हमारी तरफ पानी के ऊपर चल कर गुआ रहा है, तो कलाम में लिखा है कि शागिर्दों ने समझा कि शायद कोई भूत है, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि डरो नहीं, मैं हूं, और पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू है तो फरमा, तो कह दीजिए कि मैं चल कर तेरे पास, पानी के ऊपर चल कर तेरे पास आऊं, तू वहीं पर रुकर है। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, आ, और कलाम में लिखा है पतरस ने कश्ती पर से अपना पांव बाहर निकाला, पानी की सतह पर रख दिया, और दूसरा पांव उठाकर फिर पानी पर रख दिया, फिर इस तरह से उसने पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। इंसान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, कौमों की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसान पानी की सतह पर, पानी के ऊपर चला हो। خداوند یسوع مسیح تو چل پڑے تھے, کیونکہ وہ تو پانیوں کے خالق ہیں. جیسا کلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب 1-2-3 آیت, دا بک آف جینیسس اتپتی اور اس کا پہلا دھیا اور اس کی 1-2-3 آیت لکھا ہے, ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور لکھا ہے کہ خدا کا روپ پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا, اور وہ کیونکہ روح اللہ ہیں, وہ خدا کا روح ہیں, تو جس نے جسم لیا تھا تو جیسے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتے تھے وہ پانی پر چل سکتے ہیں, پانی ان کو ڈبو نہیں سکتا, کیونکہ پانی جانتا ہے, ندیاں جانتی ہیں, دریا جانتے ہیں, جھیلیں جانتی ہیں, سمندر جانتے ہیں کہ یہ ہمارا خالق ہے. وہ اگر ڈبونا چاہیں بھی تو ڈبو نہیں سکتے, پر وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. پر خدا یسوع مسیح نے جب کہا کیا تو صرف پترس نے نہیں سنا, باقی 11 رسولوں نے سنا, اور جو جھیل تھی جھیل نے پانی نے بھی سنا کہ خالق نے کہہ دیا ہے, ہم پترس کو ڈبو نہیں سکتے, ہم نیچر کے خلاف فطرت کے خلاف کام کریں گے, انسان کو ڈبوئیں گے نہیں. مگر جب ہوا دیکھی تو کلام میں لکھا ہے کہ پترس ڈر گیا, اور جب ڈوبنے لگا تو پھر وہ چلا اٹھا, اے خداوند مجھے بچا, تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لیا اور وہ اس کو ساتھ لے کر کشتی میں چلا گیا. اب وہاں پر تو خداوند یسوع مسیح نے کہا آ, لیکن یہاں پر ان کوڑیوں کو بھی خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی لفظ کہا تھا, اور وہ لفظ کیا تھا, جب کوڑی چلا رہے تھے, رو رہے تھے, آنسو بہا کر منت سماجت کر رہے تھے, اپنی تکلیف کے بارے میں بتا رہے تھے, شاید ان میں سے کہتا ہو میں نے سالوں سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, میری ماں کو ملنے کو میرا جی چاہتا ہے, مجھ پر رحم کر دیجئے, شفا دے دیجئے, کرم کر دیجئے, میں اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو ملنا چاہتا ہوں, میں اپنی بیوی کے پاس اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتا ہوں, میں عام انسانوں میں رہنا چاہتا ہوں. کیونکہ 9 لوگ جو تھے وہ تو جیوز تھے, وہ تو یہودی تھے, اسرائیلی تھے, ان میں ایک ہی سامری شخص تھا. اب یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص کوڑی ہوتا ہے تو پھر وہ یہودی یا سامری نہیں رہ جاتا, پھر وہ ایک ہی برادری میں شامل ہو جاتا, پھر وہ کوڑی ہی گنا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں, خداوند کے نام کی تعریف ہو. کوڑ کی وجہ سے ناپاکی آتی ہے اور موت آتی ہے, خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے سے پاکیزگی مل جاتی ہے, گناہوں کی معافی مل جاتی ہے, اور عزیز بہنوں بھائیو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے, خداوند کے نام کی تعریف ہو, پریز گاڈ. اب یہ کوڑی جب منت سماجت کر رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے ایک ہی شبد نکلا, ایک ہی لفظ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا جا, اور کلام میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے وہ جا رہے تھے ان کا کوڑ اترتا گیا اترتا گیا اترتا گیا, ختم ہوتا گیا, سر سے شروع کر کے ان کی سکن جو تھی وہ ٹھیک ہونی شروع ہو گئی, انہوں کا ماس جڑا سی سر تو ٹھیک ہونا شروع ہوا, جویں جویں اگے ٹردے گئے انہوں کا ماس ٹھیک ہوتا گیا, مکمل شفا پا گئے. جب 10 کے 10 نے ایک دوسرے کو دکھایا بھائی میں ٹھیک ہوں, بھائی جی مجھے بھی دیکھے میں ٹھیک ہوں, تو سب خوشی سے اپنے گھروں کی طرف بھاگے, یا شاید وہ کہن کی طرف بھاگے ہوں گے, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے آپ کو جا کر کہن کو دکھاؤ. اب شفا کیسے ملی تھی؟ اس کلام سے شفا ملی تھی. جب خدا یسوع مسیح نے کہا جاؤ تو وہ لفظ جو تھا, وہ شبد جو تھا, اس شبد میں زندگی تھی, اس کلام میں زندگی تھی, اس کلام میں شفا تھی. کیونکہ کلام میں لکھا ہے 107 زبور اور اس کی 19, 20 اور 21 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر بیماروں کو شفا دیتا ہے, اور ان کو ان کی مصیبت سے چھڑاتا اور موت سے رہائی بخش دیتا ہے, موت سے چھڑا دیتا ہے اپنے کلام کو بھیج کر. खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम को भेजा, जा जाओ, और जैसे कलाम ने उनको छुआ उनकी स्किन ठीक होना शुरू हो गई। खुदावंद के नाम की तारीफ। इस वक्त भी जितने बीमार कलाम को सुन रहे हैं सर से पांव तक मुकम्मल शिफा पा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं अपने रूह में महसूस कर रहा हूं लोगों की जिंदगियों में आराम आ रहा है, डिप्रेशन के मरीज शिफा पा रहे हैं, हर तरह की परेशानी जो माएं बच्चों की वजह से परेशान है खुदा यीशु मसीह उनकी परेशानी को दूर कर रहा है, जो घर टूट चुके हैं खुदा यीशु मसीह उन्हें रिस्टोर कर रहा है, अपने कलाम के वसीले से बीमारों को शिफा दे रहा है, हर तरह का लंग्स कैंसर हील हो रहा है खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदा के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी इंज किमें जाइए, पहले इतने ठीक होवांगे चेक करके फिर ही जावांगे। उन्होंने कलाम का यकीन कर लिया। ये भी बड़ी बात थी कि कोड़ी जिनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, स्किन डेड हो चुकी है, अपना चेहरा ढांपे हुए वहां पर आए होंगे। मेरा क्योंकि ऐसा तजर्बा हुआ है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैं एक दफा एक मीटिंग में था तो लोग क्योंकि नीचे बैठे हुए थे काफी ज्यादा, वो घर जो था खचा खच लोगों से भरा हुआ था, तो जब मैं कलाम सुना रहा था तो एकदम से लोगों ने इधर उधर हटना शुरू कर दिया और एक शख्स ने मुंह लपेटा हुआ था तो वो आकर दरमियान में बैठ गया और बाकी लोग जो थे वो सब पीछे पीछे हट गए उससे। तो जब मैंने कलाम सुनाना बंद किया तो लोगों के लिए मैं जब दुआ कर रहा था तो जो घर के लोग थे उन्होंने मुझे कहा जी इसके लिए भी दुआ करें। मैंने कहा इसको क्या बात है, तो जब मैंने पूछा तो वो भाई साहब जो थे उन्होंने जैसे अपना कपड़ा जरा से हटाया, उसको कोड था, ऐसी बुरी स्मेल, ऐसी बुरी बुरी बदबू आई कि मैं एक कदम पीछे हट गया और मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं दूर से दुआ कर देता हूं। तो एकदम खुदा के रूह ने मुझे कहा कि तेरा खुदावंद तो कोड़ियों को छू कर पाक साफ कर देता था, तू इससे घिन इससे नफरत क्यों कर रहा है। तो मैंने अपने दिल में कहा खुदावंद मुझे माफ कर दे। मैंने कदम आगे बढ़ाया, उस पर हाथ रखा, उसके लिए दुआ की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अगली शाम को जब मीटिंग थी, अगली शाम को जब एक बड़ी मीटिंग थी, उस मीटिंग में पास्टर हिजकेल सरोश, अभी खुदावंद में वो सो गए हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। ये शख्स सफेद कपड़े इसने पहने हुए, अब इसके चेहरे पर कोई इसने अपने चेहरे को छुपाया नहीं हुआ था, बल्कि मैंने तो उसको पहचाना भी नहीं। उसने कहा जी मैंने गवाही देनी है, मैंने लोगों को बताना है जो काम खुदा ने मेरी जिंदगी में किया है प्रभु यीशु मसीह ने। हमने कहा जी बताइए आप, उसने कहा जी सब लोग ये मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे गली के लोग हैं, ये जानते हैं कि मैं कोर का मरीज था, और कल शाम को जब मैं मीटिंग में आया था तो पास्टर नईम ने दुआ की थी मुझ पर हाथ रखकर, तो आज देखे मेरी सारी स्किन जो है खुदा यीशु मसीह ने मुझे शिफा दे दी है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह आज भी मौजजात करते हैं, आज भी कोड़ियों को पाक साफ करते हैं, चाहे वो कोड़ हमारे अंदर हो, चाहे वो कोड़ हमें बाहर से लगा हो। कोई भी रोग जड़ा लगा है प्रभु यीशु मसीह उदे तो शिफा दे सकते हैं। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। अब ये 10 लोग जो थे ये पाक साफ तो हो गए, इनकी स्किन नहीं हो गई, और जब इस सामरी ने देखा कि यहूदी तो हो गए पाक साफ, मैं भी चेक करूं, मैं सामरी हूं, मैं तो गैर कौम का बंदा हूं, मैं यहूदी या इसराइल की नस्ल से नहीं हूं, उसने भी देखा मैं भी पाक साफ हो गया हूं। अब क्योंकि वो तो काहिन के पास जा सकते थे मगर सामरी कहां जाता, सामरी के पास कोई ठिकाना नहीं था। सामरी ने सोचा कि जिसने मुझे शिफा दी है, जिसने मेरी मुर्दा खाल में जिंदगी डाल दी है, मैं तो उसी के पास वापस जाऊंगा, उसी के कदमों में गिरकर उसका शुक्र करूंगा, उसी के कदमों में गिरकर खुदा की तारीफ करूंगा। और कलाम में लिखा उन दसों में से ये वापस आया, वापस आकर खुदा की तारीफ करता हुआ खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिरकर सिजदा किया और शुक्रगुजारी करने लगा, शुक्र करने लगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बाकी नौ कहां हैं? अब ये क्वेश्चन क्यों किया था? दैट वॉज द वॉइस ऑफ द हार्ट ऑफ गॉड, खुदा के दिल की यह आवाज है कि लोग उसकी तमजीद करें, लोग उसकी तारीफ करें। जैसा कि यसाया की किताब उसका 43 बाब, जिन्होंने पंजाबी 43 बाब, उसकी 25 आयत में लिखा है, खुदा ने इसराइल के बारे में कहा कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हमद, मेरी तारीफ, मेरी स्तुति, मेरी आराधना करें। इसलिए खुदा मुंतजर था कि वो शिफा पाने के बाद खुदा की तारीफ करते। खुदा यीशु मसीह मुंतजर थे, बट दे नेवर केम बैक, वो नौ वापस नहीं आए। पर ये शख्स वापस आया और खुदा यीशु मसीह ने फिर से वही लफ्ज इसको कहा, और वो लफ्ज क्या था मैं आपके सामने दोबारा पढ़ता हूं। 19वीं आयत लिखा, फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। फिर कहा जा, लेकिन अब काहिन के पास नहीं, अपने खानदान में जा, क्योंकि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। यह गैर कौम का बंदा था, इसराइली नहीं था। गैर कौम के लोग भी जब खुदावंद के पास आते हैं तो खुदा चाहता है कि वो उसकी शुक्रगुजारी करें, उसका शुक्र करें और उसकी हमद और उसकी तारीफ करें। प्रेज गॉड। मैं आपको बताऊं कि हमद और तारीफ और शुक्र करने से आपके सारे बोझ उतर जाएंगे, सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस चला जाएगा। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये तो कलाम ने बता भी दिया है, जैसा फिलिपियों के खत में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिलिपियों का खत उसका 4 बाब, उसकी 4 से 9 आज तक लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। और तीसरे बाब में भी ऐसा लिखा हुआ है, तीसरा बाब और उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, इसमें तुम्हारी, इसी में तुम्हारी भलाई है, इट इज गुड फॉर यू। लिखा हर वक्त खुश रहो, इसमें तुम्हारी भलाई है, इट इज गुड फॉर यू। और लिखा है कि हर एक बात में खुदा का शुक्र करो, और जब आप हर एक बात में शुक्र करेंगे तो 7वीं आयत में लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान, देन द पीस ऑफ गॉड जो समझ से बिल्कुल बाहर है, जिन्हों परमेश्वर दी प्रभु यीशु मसीह दी शांति मिल जाती ना, जिदे अंदर आ जाती है, ओदिया सारिया फिक्रां चली जाती है। वह भावें भुखा हो, भावें को पैसा को है या नहीं है, लुकन दी थां है या नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उधर लुकन दी थां आप ही बन जाते हैं। लिखा देन द पीस ऑफ गॉड, तो खुदा का इत्मीनान, खुदा की शांति तुम्हारे दिलों और ख्यालों की हिफाजत करेगी। अब बुरे ख्याल जो आते हैं, जो डर और खौफ के ख्याल आते हैं, बीमारियों का डर, जॉब चले जाने का डर, बच्चों के निकल जाने का डर, बीवी का डर, शोहर का डर, हर तरह का डर और खौफ जो है वो स्ट्रेस लेकर आता है। बीमारी का डर जो है, डर और खौफ लेकर आता है। पर जब हम खुदा का शुक्र करते हैं, पीस और शांति मिल जाते हैं। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आज से हर रोज उसका शुक्र करना शुरू करें। अभी हमारे पास 10 मिनट है, मैं चाहूंगा कि लाइंस खोल दी जाएं। अगर आप कॉल करना चाहें तो मुझे पता है कि बहुत से लोगों को शिफा मिली है आज शाम इस कलाम को सुनकर। अगर आप कॉल करना चाहें, बताना चाहें कि खुदा यीशु मसीह ने किस तौर से आज शाम कलाम के वसीले से आपको शिफा दी है, तो यू आर फ्री टू कॉल, आप कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर किसी वजह से आपकी कॉल थ्रू ना हो सके तो आप बाद में भी कॉल कर सकते हैं। मैं याद दिलाता जाऊं कि आज का प्रोग्राम जो है एल्डर रजाक पीटर साहब, जो हमारी इस खिदमत इस मिनिस्ट्री के एल्डर हैं, इटली परातो में रहते हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। खुदा उनको, उनके कारोबार को और बाकी सब लोग जो वक्तन फोक्तन या रेगुलर बेसिस पर इस खिदमत मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, खुदा की बरकत उन पर सदा बनी रहेगी। खुदा उनके नाम की तारीफ हो। हम कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
हेलो, गुड इवनिंग पास्टर जी।
हाँ जी, गुड इवनिंग मेरी बहन जी।
पास्टर जी, मैं सेन बोल रही मैनचेस्टर को।
जी जी,
खुदा का बहुत शुक्र है मैं भी शफा पाई है।
अच्छा जी,
हमेशा ही तुसी दुआ कर दे हो, ते कोई भी तकलीफ होंदी है, कोई बीमारी, कोई अजमाइश होदे तो शफा पाने हैं। खुदा जी दूसरे लोगों ने जेड़े सुन रहे ने बहुत शफा दे, ईमान की मजबूती दे, खुदा मन तुम बहुत बरकत दे।
अच्छा जी, तुसी थोड़ा जा दसोगे भी तानू की प्रॉब्लम हुई सी उन्हें?
हाँ जी, उदन मैं रात नू सुती सा ते मेनू नहीं पता की होया, पर मैं बेहोश ही हो गई सा। कहंदे ने कार वाले फिर एम्बुलेंस मंगवाई ते फिर मेनू हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने ते कहा मेनू स्ट्रोक होया, लेकिन खुदावंद दे फजल दे नाल उहदा हाथ
चलते फिर खुदा ने मेहरबानी की, खुदा उनके नाम की बहुत शुक्र गुजार है कि जब दुश्मन अटैक करता है तो तू हमारा मुहाफिज बनकर हमें बचाता है, और जब दुश्मन गिराता है तो तू हमें उठा खड़ा करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं बहन नसरीन के लिए, इनके हस्बैंड भाई प्रवेश साहब और इनके बच्चों के लिए, सारे घराने के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। सारे घराने पर तेरी बरकत की दुआ मांगता हूँ, खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हेलो हेलो जी, इस्लाम जी जी, ताड़ी मेरी पेन, ताड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही।
हेलो पास्टर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है?
जी नहीं, ताड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तुसी टीवी दी आवाज बंद करके फिर गल करो प्लीज।
नहीं पास्टर, मैं टीवी के पास ही नहीं हूँ।
अच्छा अच्छा, अभी ठीक है, अभी कुछ बेहतर है जी, बताइए।
अभी बेहतर है। अच्छा पास्टर, बहुत अच्छा कलाम था आपका, बड़ी बरकत मिली है। मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है।
जी जी,
एक तो मेरी फैमिली तकरीबन सारे बच्चे, दोनों बेटे मेरे नहीं ठीक हैं, बीमार हैं, मेरे हस्बैंड भी, और दूसरा मैंने कोर्स के लिए अप्लाई किया है, फीस उसके लिए दुआ करें, खुदावंद मुझे फंड मुहैया करें, मैंने कोर्स करना है शुरू नवंबर में।
अच्छा जी, ठीक। मेरी बहन, अपना नाम बताना चाहेंगे आप या?
जी पास्टर, मर्सी बात कर रही
हूं। अच्छा 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 जी, ठीक है, ऑलराइट, ओके ओके, गॉड ब्लेस। हां जी, पर खुदावंद यीशु मसीह में बहन जी को नहीं जानता मर्सी को, पर तू उन्हें जानता है और इनके बच्चों और इनके शोहर से भी वाकिफ है। इसलिए मैं दुआ मांगता हूँ अपने जलाली हाथ से छू कर, आसमानी बाप इस सारे घराने को बरकत दे, इनके लिए नए दरवाजे खुल जाएं और इनको इनकी हर जरूरत तेरे आसमान से पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से, और सारी रुकावटें गिर जाएं तेरे मसा के जोर से, और तेरा शुक्र तूने दुआ सुन ली है खुदा यीशु मसीह नासरी, क्योंकि तू हमारे लिए मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और तू आज भी जिंदा है, اور عبدل آباد زندہ رہے گا. اور پیارے خدا میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو کسی وجہ سے کال نہیں کر سکتے. تو ان سب کے حالات سے واقف ہے, اور خاص طور پر امریکہ میں جو مسز خان کی بہن ہے ان کے لیے تیرا رحم مانگتا ہوں. تو اپنے جلالی ہاتھ سے چھو کر انہیں سارے کینسر سے مکمل رہائی بخش دے, شفا کا ایک معجزہ کر دے. اور جتنے لوگ اس وقت تیرا کلام سن رہے ہیں ان کے گھروں سے بدروہیں بھاگ رہی, میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے. تیرا شکر تو لوگوں کو شفا بخشا, ہر طرح کا گلے کا انفیکشن خداوند یسوع مسیح کے نام سے مکمل طور پر شفا پا جائے, بلکہ شفا پا چکا, میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آمین, پریز گاڈ, ہاللویہ. میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر, یہ یوٹیوب پر لائیو بھی چلتا ہے, ایم اے ٹی وی نیشنل اگر آپ اس پر لکھیں, اگر آپ نے لائیو دیکھنا ہے, ادروائز آپ بعد میں ایم اے ٹی وی اسپیس چھوڑ کر نیم خالی لکھ دیں, اور بعد میں جس دن کا پروگرام آپ نے دیکھنا اگر وہ والی ڈیٹ ڈال دیں تو آپ اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے. اور آپ اپنے دوستوں, عزیز و اقارب کو بھی یہ اس پروگرام کے بارے میں بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ خدا کے کلام کی خدمت کا پروگرام ہے. اور جب ہم سبھی, کیونکہ ہم سب کو کلام کی ضرورت ہے, ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم سب کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے, ہم سے بات کرتا ہے. یہ کیسی عظیم اور بڑی بات ہے. ہم اس کے لیے سارا جلال خداوند اپنے خدا کو دیتے ہیں. اور میں خاص طور پر پیارے خداوند اپنے بھائی کے لیے, تیرے اس خادم کے لیے, میں ان کا نام نہیں لوں گا پر تو نے جانتا ہے, میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں, انہیں چھو کر ان کے لنگس میں جو تکلیف ہے اس سے مکمل طور پر انہیں شفا رہائی بخش دیجیے. اب اسی وقت خداوند یسوع مسیح کے نام سے اپنے اس خادم کو اور اس کے گھرانے کو مکمل فتح بخش دیجیے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن کا سارا کام مٹ جائے. تو اپنے نام کے جلال کی خاطر کو معجزہ کر دے خداوند یسوع مسیح کے نام سے. ایک آخر میں ہم دعا کرتے ہیں, ہم دعا کریں گے ان تمام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو کہیں پر بھی مصیبت میں ہیں, جیسا کہ ابھی برما میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, بزرگ بچے جن کو وہاں سے نکالا گیا ہے, ہم ان کے لیے خدا کا رحم مانگیں گے. اور عراق میں یا افغانستان میں یا شام میں, سیریا میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان سب کے لیے بھی, اور امریکہ میں جو لوگ اس وقت طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. اور اپنے ملکوں کے لیے, پاکستان, انڈیا کے لیے بھی ہم دعا کریں گے تاکہ خدا کی سلامتی اور پیس وہاں پر آئے. اور ہم اپنے اس ملک یو کے کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کریں گے, اور اپنی کوئین کے لیے بھی ہم, اور کوئین کے گھرانے کے لیے بھی برکت کی دعا مانگیں گے. اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. خدا باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے دعا مانگتے ہیں برما کے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں, جو بزرگ اور بچے اور عورتیں جن کو اس ملک, ان کے ملک سے وہاں سے نکالا گیا ہے, ہم دعا کرتے ہیں ان پر رحم کیجئے, ان کی ہر ضرورت کو اپنا آسمان کھول کر پورا کیجئے. اور شام, سیریا میں جو لوگ مصیبت زدہ ہیں, جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں, عراق میں یا خداوند کسی اور جگہ پر, اور یا جو لوگ امریکہ میں طوفان کا سامنا جن کو ہے, ان سب پر رحم کیجئے. اپنی شانتی, اپنا پیس ان کو دے دیجئے خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آمین.
Like a mobile, we do things your way. Get 20% off when you buy a new SIM online with our UK plan Ultra.